आपको पता है, आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। जैसे अगर आपकी बांह टूट जाती है तो एक्सरे मशीन हड्डी में एक साफ टेढ़ी मढ़ी सफेद लाइन दिखाती है।
हाँ बिल्कुल।
और डॉक्टर बस उस पर उंगली रखकर कहता है कि देखिए ये रही दिक्कत, हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ बाइनरी।
इंसान होने के नाते हमें ये पसंद भी है। हम चाहते हैं कि चीजें साफ साफ दिखाई दें, उन्हें एक स्पष्ट श्रेणी में रखा जा सके। एक तरह का सुकून मिलता है जब हम दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं।
सही कहा। लेकिन समस्या ये है कि जब आप इतिहास, प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक संदर्भों की दुनिया में कदम रखते हैं
तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है।
एकदम सही। अचानक से हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत धुंधला, जटिल और इंसानी भावनाओं से उलझा हुआ है। और इसीलिए आज हम एक ऐसे ही प्राचीन पाठ के पन्नों को पलट रहे हैं जहां सतह पर जो दिखता है असल में कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज का हमारा स्रोत है डॉक्टर क्रेग कीनर का रोमियो यानी रोमन्स के अध्याय 16 आयत 7 से 20 पर दिया गया व्याख्यान।
आपको पता है, अक्सर लोग बाइबल के इस अध्याय को सिर्फ प्राचीन नामों की एक लंबी उबाऊ सूची समझकर छोड़ देते हैं।
हाँ, जैसे कोई फोन डायरेक्टरी पढ़ रहा हो।
बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर कीनर का ये व्याख्यान इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। ये नामों की सूची नहीं है बल्कि एक तरह का छिपा हुआ नक्शा है।
अच्छा।
हाँ, जो हमें बताता है कि प्रारंभिक चर्च में सांस्कृतिक गतिशीलता, लिंग, सत्ता और समाज को लेकर किस तरह की उथल पुथल मची हुई थी।
और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। हम इस प्राचीन पाठ में छुपे नामों की सूची के पीछे की उन कहानियों को डिकोड करेंगे।
हाँ।
जो उस समय के समाज के सारे नियम तोड़ रही थीं।
ये बहुत जरूरी भी है।
हाँ, क्योंकि आज के सूचनाओं से भरे युग में जहां मैं अक्सर बिना संदर्भ के स्क्रीनशॉट्स या आधी अधूरी हेडलाइंस मिलती हैं, ये 2000 साल पुराना ग्रंथ हमें सिखाता है कि किसी भी चीज का असली मतलब समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना कितना जरूरी है।
सही बात है।
तो सीधे रोमियो 16 आयत 7 पर चलते हैं। इस आयत में पॉल, जो इस पत्र के लेखक हैं, उन एंड्रोनिकस और जूनिया नाम के दो लोगों का जिक्र करते हैं।
हाँ।
और स्रोत के अनुसार वो इन्हें प्रेरितों के बीच उत्कृष्ट कहते हैं।
और इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प बहसों में से एक इसी बिंदु से शुरू होती है।
अच्छा।
हाँ, अगर हम सदियों पुराने अनुवादों और चर्चाओं को देखें तो डॉक्टर कीनर बताते हैं कि बाद के कुछ इतिहासकारों और अनुवादकों ने ये दावा किया कि ये जो नाम जूनिया है, ये दरअसल एक पुरुष का नाम था, जूनियानिस, और इसे छोटा करके जूनिया लिख दिया गया।
एक मिनट रुकिए। मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक महिला का नाम लग रहा था तो लोगों ने ये मान लिया कि ये किसी पुरुष के नाम का शॉर्ट फॉर्म होगा।
बिल्कुल यही हुआ था।
क्या प्राचीन ग्रीक या लैटिन में ऐसा होता था, मतलब नामों को ऐसे छोटा किया जाता था?
देखिए, व्याकरण और भाषा विज्ञान के नजरिए से ये असंभव है। लैटिन भाषा के नियमों के तहत जूनियानिस को सिकोड़कर जूनियन नहीं बनाया जा सकता।
अरे वाह।
प्राचीन लैटिन और ग्रीक साहित्य में जूनिया हमेशा बिना किसी अपवाद के एक महिला का ही नाम रहा है। ये रोम में एक बहुत ही आम महिला नाम था।
तो फिर ये पुरुष वाला आइडिया आया कहां से?
बाद के जिन लोगों ने इसे पुरुष साबित करने की कोशिश की, वो शायद अपनी इस धारणा से बंधे थे कि कोई महिला प्रेरित या अपोसल नहीं हो सकती।
हाँ, क्योंकि ये उनकी सोच के दायरे में ही नहीं था।
बिल्कुल।
जबकि जॉन क्रिसोस्टोम जैसे शुरुआती और काफी रूढ़िवादी माने जाने वाले विद्वान ने भी जब इस पाठ को पढ़ा तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए यह स्वीकार किया कि जूनिया एक महिला थी और उनका काम इतना उत्कृष्ट था कि उन्हें प्रेरितों में गिना गया।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग करने वाली है। क्या कंफ्यूजन है?
देखिए, जब हम प्रेरित या अपोस्टल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत उन मूल 12 शिष्यों की तस्वीर आती है जो यीशु के साथ थे।
हाँ, वो बहुत आम धारणा है।
क्या ये शब्द सिर्फ उन 12 लोगों के लिए रिजर्व नहीं था? एक महिला जो उन 12 में नहीं थी, उसे प्रेरित कैसे कहा जा सकता है?
इसके लिए हमें ये समझना होगा कि पहली सदी में अलग अलग लेखक शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे।
अच्छा।
लोग जिन्होंने गॉस्पेल और एक्ट्स लिखी, वो अक्सर इस शब्द को मुख्य रूप से उन 12 शिष्यों तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन पॉल का नजरिया अलग है।
अलग कैसे?
पॉल खुद को प्रेरित कहते हैं जबकि वो उन मूल 12 में नहीं थे। वो जेम्स को, सिलास को और तिमोथियस को भी प्रेरित कहते हैं।
तो पॉल के लिए कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं था?
बिल्कुल नहीं। पॉल के लिए प्रेरित का मतलब सिर्फ एक फिक्स्ड ऐतिहासिक समूह नहीं था, बल्कि ये एक कार्य आधारित भूमिका थी।
कार्य आधारित,
हाँ। इसका शाब्दिक अर्थ है वो जिसे भेजा गया हो। जो भी व्यक्ति चर्च द्वारा किसी नए इलाके में संदेश फैलाने या कलीसिया स्थापित करने के लिए भेजा जाता था वो पॉल की नजर में प्रेरित था।
समझ गया।
और अगर हम पुराने नियम को देखें तो नेतृत्व में महिलाओं का होना कोई नई बात नहीं थी। दबोरा पूरे इसराइल की जज और सैन्य नेता थी।
हाँ, दबोरा की कहानी काफी प्रसिद्ध है।
और हुल्दा और मिरियम नबियां थीं जो सीधे भगवान का संदेश देती थीं। नए नियम में भी मंदिर में अन्ना का जिक्र है और फिलिप की चार बेटियां थीं जो भविष्यवाणी करती थीं।
इसे इस तरह से देखते हैं, क्या हम प्रेरित शब्द को एक बहुत ही सख्त कॉरपोरेट पद जैसे आज के समय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बजाय एक आधुनिक स्टार्टअप की लचीली भूमिका के रूप में समझ सकते हैं?
ये एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है।
मेरा मतलब है, शुरुआती साई धर्म एक स्टार्टअप की तरह ही तो था। उनके पास कोई विशाल इमारतें या हेडक्वार्टर्स नहीं थे।
बिल्कुल नहीं, सब घरों से चल रहा था।
हाँ, तो पीटर और जॉन शायद उस स्टार्टअप के फाउंडर रहे होंगे, लेकिन पॉल, एंड्रोनिकस और जूनियर जैसे लोग वो अग्रेसिव फील्ड ऑपरेटिव्स थे जो नए शहरों में जा रहे थे, नई ब्रांच खोल रहे थे,
खतरे उठा रहे थे।
हाँ, खतरे उठा रहे थे। तो जो जमीन पर काम कर रहा है, परिणाम ला रहा है, उसे वही मान्यता दी गई, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो।
ये तुलना उस समय की वास्तविकता के काफी करीब है। शुरुआती दशकों में कोई स्थापित पदानुक्रम या विशाल संस्थागत ढांचा नहीं था। संदेश को जीवित रखना और उसे फैलाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। लेकिन यहीं पर डॉक्टर टीना हमें एक ऐसी खाई के किनारे लाकर खड़ा कर देते हैं जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है।
हाँ, और यही वो विरोधाभास है जो मुझे चकरा देता है। एक तरफ हमारे पास रोमियो 16 है जहां जूनिया जैसी महिला प्रेरित हैं, और फोबे नाम की एक महिला का जिक्र है जिन्हें डाइकोनोस यानी मंत्री या सेवक कहा गया है।
हाँ, पॉल खुद इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ पॉल के ही लिखे गए अन्य पत्रों में, जैसे 1 करिन्थियों 14 और 1 तिमोथियुस 2 में, हमें महिलाओं को चर्च में मौन रहने का स्पष्ट निर्देश मिलता है। यहां तक लिखा है कि उन्हें सवाल पूछने की भी अनुमति नहीं है। ये इतना बड़ा यूटर्न कैसे हो सकता है?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये पहेली सुलझने लगती है।
तो संदर्भ क्या था?
डॉक्टर कीनर स्पष्ट करते हैं कि पहली सदी की ग्रीक और यहूदी संस्कृतियों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान बिल्कुल नहीं थी। लड़कियों की शादी अक्सर उनके किशोरावस्था की शुरुआत में ही कर दी जाती थी।
मतलब 13-14 साल की उम्र में।
हाँ, जबकि पुरुषों की शादी उनके 20वें या 30वें वर्ष के आसपास होती थी। और सबसे बड़ा अंतर शिक्षा का था।
अच्छा।
महिलाओं को दर्शन शास्त्र, धर्म ग्रंथों या सार्वजनिक भाषण की वो शिक्षा नहीं मिलती थी जो पुरुषों के लिए आम थी।
तो इसका मतलब है कि जब वे किसी धार्मिक या दार्शनिक चर्चा में बैठती होंगी तो उनके पास उस विषय का वो बुनियादी ज्ञान नहीं होता होगा जो वहां बैठे पुरुषों के पास था।
ठीक यही बात है। अब उस समय के चर्च की कल्पना कीजिए, वे आज की तरह बड़े शांत इमारतों में नहीं लगते थे, वे हाउस चर्च थे।
मतलब किसी के लिविंग रूम या आंगन में।
हाँ, किसी संपन्न व्यक्ति के घर के आंगन या डाइनिंग एरिया में चलने वाली सभाएं, वहां कोई एक व्यक्ति शिक्षा या व्याख्यान दे रहा है। ऐसे में यदि ऐसे लोग जिनके पास विषय का संदर्भ नहीं है बार बार अज्ञानी प्रश्न पूछकर या आपस में बात करके व्याख्यान में बाधा डालने लगे तो पूरी सभा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।
ये तो बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है।
और विशेषकर ग्रीक संस्कृति में सार्वजनिक रूप से महिलाओं का इस तरह से दखल देना बहुत अनुचित माना जाता था। और 1 तिमोथियुस 2 के मामले में स्थिति और भी गंभीर थी।
वहाँ क्या हुआ था?
एफेसस शहर में झूठे शिक्षक विशेष रूप से युवा और धनी विधवाओं के घरों को अपना निशाना बना रहे थे।
वाह।
ये विधवाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र तो थीं, लेकिन धार्मिक शिक्षा के अभाव में वे आसानी से उन गलत शिक्षाओं का शिकार हो रही थी और फिर उन्हीं गलत बातों को अपनी सभाओं में फैला रही थी।
अच्छा, तो क्या ये स्थिति वैसी ही थी जैसे आज के किसी बड़े टाउन हॉल मीटिंग या किसी विशाल ऑनलाइन क्लास में होती है?
कैसे?
मान लीजिए एक जूम कॉल या ऑनलाइन क्लास चल रही है और कुछ लोग जिन्हें विषय की कोई पृष्ठभूमि नहीं पता वो बार बार अपने माइक अनम्यूट करके बीच में बुनियादी या अप्रासंगिक सवाल पूछने लगते हैं जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है।
हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है।
तो अंत में परेशान होकर मॉडरेटर को मजबूरन कहना पड़ता है कि कृपया सब लोग अपने माइक म्यूट रखें, कोई बीच में नहीं बोलेगा।
बहुत अच्छी तुलना है।
तो ये महिलाओं को हमेशा के लिए दबाने की कोई ब्रह्मांडीय साजिश नहीं थी बल्कि उस समय के एक बहुत ही विशिष्ट स्थानीय हंगामे को शांत करने का एक तात्कालिक तरीका था।
मॉडरेटर माइक इसलिए म्यूट नहीं कर रहा क्योंकि उससे किसी की आवाज से नफरत है, बल्कि इसलिए ताकि जो मुख्य बात सिखाई जा रही है वो पूरी हो सके।
बिल्कुल।
हालांकि यहाँ हमें एक तटस्थता का नियम लागू करना जरूरी है। हम दोनों को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि आज भी ईसाई परंपराओं में इन आयतों को लेकर गहरी बहस है।
हाँ, और हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ स्रोत की जानकारी देना है।
बिल्कुल। कुछ परंपराएं मानती हैं कि महिलाओं का मौन रहना एक सार्वभौमिक नियम है जो हर युग के लिए है, जबकि अन्य लोग और डॉक्टर कीनर का विश्लेषण इसी ओर इशारा करता है। वे इसे एक विशिष्ट सांस्कृतिक और शैक्षिक समस्या का अल्पकालिक समाधान मानते हैं।
ये काफी लॉजिकल लगता है।
और एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि रोम और सिलिपी, जहां पॉल ने महिलाओं की नेतृत्व भूमिकाओं का सबसे ज्यादा जिक्र किया है, वे उस समय रोमन साम्राज्य के सबसे जेंडर प्रोग्रेसिव शहर माने जाते थे।
अच्छा।
तो भूगोल और संस्कृति ये तय कर रहे थे कि नियम कैसे लागू होंगे।
बिल्कुल।
तो अगर हम जेंडर से आगे बढ़ें तो रोमियो 16 में कुछ और भी है जो रोमन समाज के पूरे ढांचे को चुनौती दे रहा था। मेरा मतलब है क्लास और सत्ता से।
हाँ।
पॉल कुछ ऐसे नाम लेते हैं, एम्प्लियाटस, अर्बानोस और अरिस्टोबुलस के घराने के लोग।
रोमन समाज में जेंडर से भी बड़ी अगर कोई दीवार थी तो वो थी सामाजिक वर्ग और दास प्रथा की दीवार।
जब हम आज दास प्रथा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 18वीं और 19वीं शताब्दी के अमेरिकी इतिहास की भयानक तस्वीरें आती हैं।
हाँ, खेतों में काम करने वाले दासों की तस्वीर।
प्राचीन रोम में भी खेतों या खदानों में काम करने वाले दासों की स्थिति बेहद क्रूर थी, लेकिन रोम में घरेलू दास प्रथा या राजशाही से जुड़े दासों की एक पूरी अलग श्रेणी थी,
जो बहुत अलग थी, राइट?
हाँ, जो हमारी आधुनिक समझ से बिल्कुल अलग है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसे आपने अरिस्टोबुलस का नाम लिया, क्या वो महान हेरोदेस के वंश से नहीं था जो एक बहुत बड़ा यहूदी राजघराना था?
यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि डॉक्टर कीनर जिस सबसे अहम नाम का जिक्र करते हैं वो है नार्सिसस का घराना। पॉल अपनी चिट्ठी में नार्सिसस के घराने के ईसाइयों को सलाम भेज रहे हैं।
और ये नार्सिसस कोई आम आदमी नहीं था, है ना?
बिल्कुल नहीं। नार्सिसस तत्कालीन सम्राट क्लॉडियस का फ्रीडमैन सेक्रेटरी था।
मतलब वो व्यक्ति जो कभी दास था, फिर उसे आजाद कर दिया गया और वो सीधे रोमन सम्राट का सचिव बन गया।
एकदम सही। और पता है उसके पास करीब 40 करोड़ सेस्टरसीज की संपत्ति थी।
40 करोड़?
हाँ। डॉक्टर कीनर अपने व्याख्यान में मजाक में कहते हैं कि एक आम मजदूर को इतना पैसा कमाने में शायद 10 लाख साल लग जाते।
लेकिन ये कैसे संभव है? एक दास, चाहे वो आजाद ही क्यों ना हो गया हो, उसके पास इतनी संपत्ति कैसे आ सकती है? ये तो रोमन सीनेटरों से भी ज्यादा संपत्ति लग रही है। रोमन समाज में एक दास इतना ताकतवर कैसे हो सकता है?
ये सब पेट्रोनेज यानी संरक्षण के सिस्टम पर काम करता था। रोमन साम्राज्य में आपकी ताकत इस बात से तय नहीं होती थी कि आप जन्म से कौन हैं, बल्कि इस बात से तय होती थी कि आपका मालिक कौन है। नार्सिसस सीधे सम्राट क्लॉडियस के अधीन था।
अच्छा।
इसका मतलब था कि जब नार्सिसस कोई आदेश देता था तो वो तकनीकी रूप से सम्राट की आवाज मानी जाती थी। एक स्वतंत्र रोमन नागरिक या यहाँ तक कि एक रोमन सीनेटर भी सम्राट के दास के सामने झुकने को मजबूर होता था।
क्योंकि उस दास के पास सीधे सत्ता के शिखर तक पहुँच थी।
बिल्कुल।
ये तो बिल्कुल आज के समय के उन ताकतवर चीफ ऑफ स्टाफ या पॉलिटिकल फिक्सर्स की तरह है।
हाँ, बिल्कुल वैसी ही स्थिति है।
मतलब तकनीकी रूप से वे सिर्फ एक कर्मचारी हैं, जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया है, उनका कोई अपना सार्वजनिक पद नहीं है, लेकिन असल में राजनेताओं, सांसदों और अरबपतियों से ज्यादा पर्दे के पीछे की सत्ता वही चलाते हैं।
क्योंकि उनके पास सीधा राजा के कान तक एक्सेस होता है।
और इसी वजह से ये सबसे खतरनाक जगह भी थी जब क्लॉडियस के बाद सत्ता का तख्ता पलट हुआ और नई पत्नी एग्रिपीना, जो नीरो की माँ थी।
हाँ, नीरो बहुत कुख्यात था।
हाँ, जब वो सत्ता में आई तो उसने सबसे पहले नार्सिसस को ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। पर्दे के पीछे की सत्ता अक्सर सबसे पहले कटघरे में आती है।
बाप रे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉल नार्सिसस के घराने के लोगों को अपनी चिट्ठी में याद कर रहे हैं।
इसका मतलब है कि सत्ता के इतने ऊंचे, भ्रष्ट और खून खराबे वाले गलियारों में भी, जहाँ हर दिन साजिशें रची जा रही थी,
वहाँ भी ईसाई संदेश पहुँच चुका था और लोग उसे अपना रहे थे।
ये अमेजिंग है। लेकिन सत्ता के इन खौफनाक गलियारों से निकलकर पॉल अचानक कुछ ऐसे नाम लेते हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत और आत्मीय लगते हैं। वो ट्राइफेना और ट्राइफोसा का नाम लेते हैं जो शायद जुड़वा बहने थी। वो पर्सिस का जिक्र करते हैं जो संभवतः फारस से आई एक दास थी, और फिर वो रूफस और उसकी माँ का जिक्र करते हैं।
हाँ, रूफस।
यहाँ जो बात मुझे चौंकाती है वो ये है कि पॉल रूफस की माँ को अपनी माँ कहते हैं।
क्या पॉल की सगी माँ रोम में शिफ्ट हो गई थी?
नहीं नहीं, वो जैविक रूप से पॉल की माँ नहीं थी। ये मानव शास्त्र में जिसे कल्पित रिश्ते या फिक्टिव किनशिप कहा जाता है उसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है।
अच्छा, फिक्टिव किनशिप।
रोमन समाज में जहाँ पारिवारिक ढांचा जिसे पैटरफेमिलियस कहा जाता था वो बहुत सख्त था, और एक घर का पुरुष मुखिया सब कुछ नियंत्रित करता था, वहाँ शुरुआती ईसाइयों ने एक समानांतर परिवार बनाना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे को भाई, बहन या माँ कहकर बुलाते थे।
तो ये एक तरह का नया परिवार था। हाँ, और डॉक्टर कीनर यहाँ रूफस की एक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हैं। रूफस संभवतः साइरीन के शमोन का बेटा था।
शमोन?
शमोन वही व्यक्ति था जिसे रोमन सैनिकों ने यीशु को सूली पर चढ़ाए जाते समय उनका क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया था।
ओह माय गॉड।
हाँ, अगर ये सच है तो आप देख सकते हैं कि ये समुदाय इतिहास और आत्मीयता से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था।
बहुत ही क्रांतिकारी विचार लगता है, एक सीनेटर का परिवार और एक दासों का परिवार एक साथ बैठ रहे हैं और एक दूसरे को भाई बहन कह रहे हैं।
बिल्कुल।
और इसी आत्मीयता को दर्शाने के लिए पॉल आगे एक निर्देश देते हैं, पवित्र चुंबन के साथ एक दूसरे का अभिवादन करो।
द होली किस।
मुझे लगता है कि आज के कॉरपोरेट या आधुनिक संदर्भ में ये थोड़ा अजीब या शायद एक HR वायलेशन लग सकता है।
हाँ, आधुनिक चश्मे से देखने पर यह अजीब लग सकता है, लेकिन पहली सदी के मध्य पूर्वी और भूमध्य सागरीय समाज में रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के बीच गाल पर हल्का चुंबन एक बहुत ही सामान्य और आदरणीय अभिवादन था।
अच्छा,
लेकिन चर्च के भीतर इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य था। रोमन समाज गहरे स्तर पर बटा हुआ था, मालिक और दास, यहूदी और गैर यहूदी, अमीर और गरीब। जब पॉल कहते हैं कि एक दूसरे का पवित्र चुंबन से अभिवादन करो, तो वो दरअसल कह रहे थे कि जब तुम इस कमरे में कदम रखते हो तो बाहर की दुनिया के सारे सामाजिक पदानुक्रम खत्म हो जाते हैं।
मतलब कोई बछोटा नहीं रहा।
हाँ, सोचिए, एक पूर्व यहूदी रब्बी एक रोमन दास का चुंबन से स्वागत कर रहा है। ये उस समय के हिसाब से बहुत ही विघटनकारी या डिसरप्टिव था। डॉक्टर कीनर यहाँ अपने क्लासरूम का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा साझा करते हैं।
हाँ, वो सिर ढकने वाला किस्सा।
बिल्कुल। डॉक्टर कीनर बता रहे थे कि कैसे एक बार क्लास में एक छात्र ने बहुत जोर देकर कहा कि महिलाओं को चर्च में अपना सिर ढकना ही चाहिए, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, और जो ऐसा नहीं करती वो पाप कर रही हैं। में 5 गुना अधिक बार पवित्र चुंबन के साथ अभिवादन करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है।
हाँ।
लेकिन डॉक्टर कीनर ने कहा, जब मैं आज सुबह क्लास में आया तो आप में से किसी ने भी मुझे पवित्र चुंबन देकर मेरा अभिवादन नहीं किया।
ये बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है कि हम अक्सर अपनी सुविधानुसार ग्रंथों से वे सांस्कृतिक नियम चुन लेते हैं जो हमें पसंद होते हैं
और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं।
बिल्कुल। अगर हम इस कल्पित रिश्ते और पवित्र चुंबन को रोमन सत्ता के नजरिए से देखें तो क्या ये उस समय के पारंपरिक पारिवारिक और राज्य के ढांचे के लिए एक सीधा खतरा महसूस नहीं हुआ होगा?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हुआ होगा।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में जब लोग अपने पारंपरिक परिवारों से अलग थलग महसूस करते हैं तो वो अपनी चुनी हुई फैमिली या चूजन फैमिली बनाते हैं जो खून के रिश्तों से परे होती है, और जब कोई ऐसा मजबूत स्वतंत्र समूह बनता है तो स्थापित सत्ता हमेशा उससे डगती है।
और तथ्य यह है कि जहां ऐसी अभूतपूर्व एकता और नयापन होता है, वहां उसे तोड़ने वाले भी जल्दी आ जाते हैं। और इसीलिए रोमियो 16 के अंत में आयत 17 से 20 में पॉल अचानक अपना लहजा बदलते हैं।
हाँ, मैंने भी गौर किया।
वो इस प्रेम भरे अभिवादन से सीधे एक बहुत ही सख्त चेतावनी पर आ जाते हैं।
वो चर्च को झूठे शिक्षकों से सावधान करते हैं और एक अजीब मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग अपने पेट के दास हैं।
पेट के दास।
ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे पॉल उन्हें सिर्फ पेटू या लालची कह रहे हैं, जो शायद दावतों में बहुत ज्यादा खाना खा जाते थे।
नहीं।
क्या ये सिर्फ एक सस्ता ताना था, या पहली सदी के रोमन जगत में इसका कोई गहरा दार्शनिक अर्थ होता था?
ये सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं था। उस समय के दार्शनिक जैसे अलेक्जेंड्रिया के यहूदी दार्शनिक फिलो इस शब्द का इस्तेमाल आत्मभोग या सेल्फ इंडल्जेंस की पूरी जीवन शैली का वर्णन करने के लिए करते थे।
अच्छा।
पेट का दास होने का मतलब था एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ऊंचे आदर्श, सच्चाई या समुदाय की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी हर हरकत उसके अपने स्वार्थ, अपनी कामुकता, अपने लालच और अपनी भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए है।
तो ये पूरी तरह से एक स्वार्थी एजेंडा था।
बिल्कुल। और पॉल बताते हैं कि ये झूठे शिक्षक अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं।
हथियार?
हाँ, वे दो ग्रीक शब्दों का उपयोग करते हैं, क्रिस्टोलॉजिया और यूलॉजिया।
तो वे सिर्फ सड़कों पर खड़े होकर झूठ नहीं चिल्ला रहे थे। ये क्रिस्टोलॉजिया और यूलॉजिया आखिर क्या थे?
ये सीधे तौर पर झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्रिस्टोलॉजिया का मतलब है बहुत ही चिकनी चुपड़ी, समझदार और पहली नजर में पूरी तरह विश्वसनीय लगने वाली बातें।
सबसे अच्छे झूठ वे होते हैं जिनमें 99% सच्चाई होती है।
सही कहा। और यूलोगिया का अर्थ है चापलूसी भरी प्रशंसा।
अच्छा,
ये झूठे शिक्षक मंच पर आकर ऐसी बातें करते थे जो सुनने में बहुत लॉजिकल लगती थीं, जो लोगों की दबी हुई इच्छाओं को सहलाती थीं, उनके अहंकार को बढ़ाती थीं।
तो इसके खिलाफ पॉल क्या रणनीति देते हैं?
पॉल कहते हैं, भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए निर्दोष बनो।
तो इस सबका असल मतलब क्या है? अगर मैं इन प्राचीन चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों को आज की दुनिया से जोड़कर देखूं, तो क्या ये आज के उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सेल्फ हेल्प गुरुओं की तरह नहीं है? वे कैमरे के सामने आते हैं, एक परफेक्ट रिसर्च की हुई स्क्रिप्ट यानी क्रिस्टोलॉजिया के जरिए आपसे बात करते हैं।
बिल्कुल सही।
वो आपको बताते हैं कि आप कितने खास हैं, आप दुनिया जीत सकते हैं। ये हो गया यूलोगिया। लेकिन असल में उनका मकसद आपकी भलाई नहीं है, उनका मकसद है अपना कोर्स बेचना, अपने व्यूज बढ़ाना या अपने स्पॉन्सर्स को खुश करना।
हाँ,
वे सिर्फ अपने फायदे के यानी अपने पेट के दास हैं और जनता को बहुत ही प्यार से गुमराह कर रहे हैं।
धोखा देने का मनोविज्ञान आज भी वही है, सिर्फ माध्यम बदला है। और पॉल का जो निर्देश है, भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए निर्दोष बनो, ये असल में अदन के बगीचे यानी उत्पत्ति में आदम और हव्वा की कहानी का एक वैचारिक उलट या रिवर्सल है।
रिवर्सल दिसे।
आदम और हव्वा ने बुराई का अनुभव करके उसे सीखा था। पॉल कह रहे हैं कि तुम्हें बुराई का स्वाद चखने या उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस भलाई को पहचानने में चतुर बनो। और यहीं पर पॉल एक बहुत ही ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक बात कहते हैं, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा। ये सीधे तौर पर उत्पत्ति 3.15 और प्रकाशित वाक्य 12 से जुड़ा है, जहां सांप या शैतान को कुचलने की बात कही गई है।
एक मिनट, क्या उस समय के लोग सचमुच मानते थे कि बुराई कोई भौतिक चीज है जिसे कुचला जा सकता है? आज तो हम बुराई को एक मनोवैज्ञानिक या सामाजिक समस्या मानते हैं।
पहली सदी के लोगों के लिए बुराई कोई अमूर्त विचार या सिर्फ खराब मनोविज्ञान नहीं थी, वो एक वास्तविक सक्रिय शक्ति थी। उस समय के यहूदी साहित्य में रब्बी पल्लिमों की एक बहुत ही प्रसिद्ध और हास्य कथा है, जो दिखाती है कि लोग शैतान को कितना वास्तविक मानते थे।
क्या कहानी है वो?
पल्लिमों को आदत थी कि वो हर दिन शैतान को गालियां देता था, उसे कोसता था।
अच्छा।
एक दिन शैतान सचमुच एक भौतिक रूप में उसके सामने प्रकट हो गया। उसने पल्लिमों को दौड़ाना शुरू किया और उसे एक सार्वजनिक स्नानघर यानी बाथहाउस में ले जाकर कोने में धकेल दिया। पल्लिमो इतना डर गया कि वो चिल्लाकर बोला, मैं हार मानता हूं। तब शैतान ने कहा, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। ये कहानी सुनने में भले ही फनी लगे, लेकिन ये उस दौर के लोगों की मानसिकता को दर्शाती है। वे मानते थे कि वे एक वास्तविक आत्मिक युद्ध के बीच में हैं, जहां भलाई और बुराई का सीधा टकराव हो रहा है।
ये सच में एक बहुत अलग नजरिया है दुनिया को देखने का।
बिल्कुल।
आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमने जो ये लंबी यात्रा की है, उसमें रोमियो का ये 16वां अध्याय केवल नामों की एक उबाऊ सूची बिल्कुल साबित नहीं हुआ।
बिल्कुल नहीं।
यह एक धड़कते हुए जीवित समुदाय की एक रंगीन तस्वीर है, एक ऐसा समुदाय जो जेंडर रोल्स की सीमाओं को लांघ रहा था, जो नार्सिस जैसे लोगों के जरिए सत्ता के चरम संघर्षों को देख रहा था, जो पवित्र चुम्बन के जरिए सामाजिक वर्गों को मिटा रहा था और जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों की झूठी सूचनाओं से खुद को बचा रहा था।
और हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि जब भी हम कोई प्राचीन ग्रंथ, कोई ऐतिहासिक पत्र या यहाँ तक कि आज की कोई खबर पढ़ें, तो हमें हमेशा सतह के नीचे छिपे उस सांस्कृतिक संदर्भ को खोजने की कोशिश करनी चाहिए।
सही बात है।
हर पुरानी किताब के किसी उबाऊ सी लगने वाली सूची में एक नार्सिस जैसी सत्ता की कहानी या जूनिया जैसी महिला की अनकही कहानी छिपी हो सकती है।
पॉल का ये 2000 साल पुराना पत्र पूरी तरह से अपने समय के अलिखित सांस्कृतिक नियमों पर टिका हुआ था। किसे हाउस चर्च में चुप रहना है, अभिवादन कैसे करना है या परिवार किसे कहना है, हम आज उन नियमों पर डिकोड करने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि हमारे पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो आज के इस डीप डाइव के अंत में मैं आपको एक नए विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, आज हम दिन भर में हजारों टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया पर मीम्स और ढेरों इमोजीज भेजते हैं। हम अपनी बातों में बहुत सारा व्यंग्य या सार्केज्म इस्तेमाल करते हैं।
हाँ।
आज से 200 या 500 साल बाद, जब भविष्य के लोग या शायद कोई एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इन डिजिटल अभिलेखों को डिकोड करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? उस एआई के पास हमारे इन मैसेज का इंसानी और सांस्कृतिक संदर्भ नहीं होगा।
ये तो काफी डरावना ख्याल।
क्या भविष्य के इतिहासकार हमारे भेजे गए लॉफिंग इमोजी या किसी वायरल मीम का बिल्कुल गलत, शायद कोई बहुत ही डरावना या धार्मिक मतलब निकाल लेंगे? क्या वे हमारे व्हाट्सएप चैट्स पर ठीक वैसे ही लंबे लंबे व्याख्यान देंगे और बहस करेंगे जैसे आज हम रोमियो के इस पत्र पर कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।